नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक और भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का सोमवार रात जमशेदपुर में निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे। टाटा स्टील ने ईरानी के निधन की जानकारी दी। ईरानी 4 दशकों से अधिक समय तक टाटा स्टील से जुड़े थे। वो 43 साल की विरासत को पीछे छोड़ते हुए जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए थे। टाटा स्टील ने एक बयान में कहा, भारत के स्टील मैन का निधन हो गया है। अत्यंत दुख के साथ टाटा स्टील पद्म भूषण डॉक्टर जमशेद जे ईरानी के निधन की सूचना दे रही है। उनका निधन 31 अक्टूबर 2022 को रात 10 बजे जमशेदपुर के TMH में हुआ। GST अक्टूबर में 16.6% बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। ये अब तक का दूसरा सबसे अधिक GST संग्रह है। GST संग्रह अप्रैल में लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक अक्टूबर 2022 में सकल GST संग्रह 1,51,718 करोड़ रुपए था। इसमें केंद्रीय GST 26,039 करोड़ रुपए, राज्य GST 33,396 करोड़ रुपए और एकीकृत GST की हिस्सेदारी 81,778 करोड़ रुपए है। भारतीय विमानन कंपनियों के 75 से अधिक विमान रखरखाव और इंजन से संबंधित मुद्दों के कारण वर्तमान में ठप खड़े हैं। विमानन क्षेत्र की सलाहकार कंपनी CAPA की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है। कापा की रिपोर्ट भारत मध्यावधि परिदृश्य 2023 में कहा गया है कि ये विमान रखरखाव और इंजन से संबंधित खामियों के कारण बंद पड़े हैं। इन विमानों की संख्या भारतीय बेड़े का लगभग 10-12% है और दूसरी छमाही में इनका वित्तीय नतीजों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 75 से अधिक विमान खड़े हैं। ये विमान पहले से ही प्रतिकूल लागत के चलते गंभीर चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान और भविष्य की आपूर्ति को प्रभावित करने वाली गंभीर आपूर्ति श्रृंखला के कारण क्षमता प्रभावित हुई है। अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में इन मुद्दों के बढ़ने की संभावना है, जो भविष्य में आपूर्ति को प्रभावित करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल पायलटों और इंजीनियरों की कमी जैसे गैर आपूर्ति के मुद्दे भी उद्योग के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं। वरिष्ठ नौकरशाह अमृतलाल मीणा ने मंगलवार को कोयला मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाल लिया है। मीणा ने अनिल कुमार जैन का स्थान लिया है, जो सोमवार को सेवानिवृत्त हुए। बिहार कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मीणा इससे पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में विशेष सचिव थे। गूगल ने भारत में डिजिटल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए प्ले बिलिंग प्रणाली को रोकने का फैसला किया है। CCI के हालिया फैसलों के मद्देनज़र ये कदम उठाया गया है। कंपनी ने साथ ही कहा कि वो सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। CCI ने पिछले महीने प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में गूगल पर जुर्माना लगाया था। नियामक ने कंपनी को अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं को रोकने और साथ ही एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिस्पर्धा विरोधी मसलों को हल करने का निर्देश भी दिया था। गूगल ने कहा, CCI के हालिया फैसले के बाद हम भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा डिजिटल सामान और सेवाओं की खरीद के लेन देन के लिए गूगल प्ले की बिलिंग प्रणाली को रोक रहे हैं। कंपनी ने हालांकि कहा कि वो अपने कानूनी विकल्पों की समीक्षा कर रही है और ये एंड्रॉयड तथा प्ले में निवेश जारी रखेगी। अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क ट्विटर के लिए बड़े बदलाव कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया मंच के मालिक के रूप में उन्हें अपने पहले सप्ताह में कई बड़ी बाधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कंपनी द्वारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को सोमवार को दी जानकारी के मुताबिक ट्विटर के नए मालिक ने निदेशक मंडल को भंग कर दिया है और खुद को बोर्ड का एकमात्र सदस्य बना लिया। मस्क ने बाद में ट्विटर पर कहा कि नई बोर्ड व्यवस्था अस्थायी है, लेकिन उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने फोर्टिस हेल्थ केयर होल्डिंग्स सहित 52 इकाइयों पर कुल 21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना रैलीगियर एंटरप्राइजेस की एक इकाई रैलीगियर फिन वेस्ट के कोष की हेराफेरी और दुरुपयोग के मामले में लगाया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा सोमवार को पारित एक आदेश के अनुसार इन इकाइयों से 45 दिन के भीतर जुर्माना भरने के लिए कहा गया है। इस मामले में सूचीबद्ध कंपनी रैलीगियर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के कोष को उसकी अनुषंगी रैलीगियर फिन वेस्ट लिमिटेड के जरिए गलत तरीके से कहीं और भेजा गया। इसका मकसद पिछले प्रवर्तकों RHC होल्डिंग मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन को फायदा पहुंचाना था। सेबी ने अपने 390 पन्नों के आदेश में कहा कि धोखाधड़ी की पूरी योजना के कारण REL की एक अनुषंगी कंपनी से 2473.66 करोड़ रुपए की राशि कहीं और भेजी गई और RFL की 487.92 करोड़ रुपए की धनराशि का दुरुपयोग हुआ। नोकिया G60 5G स्मार्टफोन को आखिरकार 1 नवंबर को देश में लॉन्च कर दिया गया। नए नोकिया हैंडसेट को पिछले सप्ताह ही नोकिया की भारतीय वेबसाइट पर लिस्ट किया गया था। नोकिया G60 5G एक मिड बजट स्मार्टफोन है। नोकिया G60 5G स्मार्टफोन को भारत में 29,999 रुपए में लॉन्च किया गया है। फ़ोन की बिक्री देश में 8 नवंबर से शुरू होगी। नोकिया G60 5G में 6GB रैम दी गई है। फ़ोन को 128GB इनबिल्ट स्टोरेज में उपलब्ध कराया गया है। ये स्मार्टफोन ड्यूअल सिम सपोर्ट करता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iGenSatta.com पर नमस्कार।